हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 8, 9, 10 एंड 11। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना कसादया, येने च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबरधरुण बिंबफल धरोष्ठा, पुरलेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 8। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के उस स्वरूप के अंदर हृदय ठिकाने के लिए बता रहे हैं जो संपूर्ण जीवों के हृदय में है। वे कहते हैं, केचित् स्वदेहान्तरिदयावकाशे प्रादेश्यमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं गञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचित् स्वदेहान्तरिदयावकाशे प्रादेश्यमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं गञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचित् स्वदेहान्तरिदयावकाशे प्रादेश्यमात्रं पुरुषं वसन्तम् चतुर्भुजं गञ्जरथाङ्गशङ्खं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। शब्दार्थ, केचित् स्वदेहांत, केचित मतलब अन्य लोग, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमने पहले भगवान के उस स्वरूप के विषय में पढ़ा ना, जो कि संसार की प्रत्येक वस्तु को देखकर भगवान के ही अंग की धारणा करनी पड़े, है ना। जैसे हमने पढ़ा कि सारे वृक्ष जो हैं वो भगवान के शरीर के रोम हैं, जितने भी पर्वत हैं वो भगवान के शरीर की हड्डियां हैं, जितनी भी नदियां हैं वो भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं, सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं, अश्विनी कुमार भगवान के कर्ण हैं। तो ये सब मतलब भौतिक वस्तुओं के अंदर भगवान की धारणा करने के लिए बताया गया था, और आज सुखदेव गोस्वामी भगवान के उससे ऊपर वाले स्वरूप की बात कर रहे हैं, जो कि और भी जो जीव के हृदय में स्थित है। स्थूल धारणा के अलावा कुछ ऐसा जो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्थूल धारणा के अंदर नहीं, वो सोचते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है। तो केचित् स्वदेहांत, कुछ ऐसे होते हैं स्वदेहांत मतलब अपने शरीर में हृदयावकाशे, जो हृदय के अंदर, अवकाशी मतलब उसके अंदर जो रहता है, और प्रादेश्य मात्रम, उसकी साइज क्या है, प्रादेश्य मात्रम मतलब लगभग 8 इंच होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथ या एक बित्ता, तो वो है ना 8 इंच के बराबर होता है। पुरुष वसंतम, वो ऐसा पुरुष जो हृदय के अंदर रहता है और उसकी साइज कम से कम 8 इंच है, और उसका स्वरूप कैसा है, चतुर्भुजम, 4 हाथों वाला है, और उनके हाथों में क्या है, कंजरथाङ्गशङ्ख, कंजर कंज कहते हैं कमल फूल को, रथांग मतलब चक्र या रथ का पहिया जैसे होता है ना उसको, और गदाधरम यानी गदा को हाथ में पकड़ के, शंख यानी शंख, गदाधरम यानी गदा, ये 4 भगवान के आयुध हैं, भगवान के हथियार हैं, क्या, शंख चक्र गदा पदम धारण या स्मरन्ति। तो वो जो अपने हृदय में भगवान परमात्मा का स्वरूप का धारणा करते हैं तो उसी स्वरूप के विषय में सोचते हैं, मतलब ये नारायण का स्वरूप है ना, जिसमें 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म ये आयुध होते हैं उनके। तो नारायण भी बहुत सारे स्वरूप में होते हैं, इनको जनार्दन कहा जाता है, जन का मतलब होता है जो सामान्य लोग होते हैं, और अर्धन का मतलब होता है उन सबको अपने कंट्रोल में रखने वाले, वो भगवान जो प्रत्येक जीव को अपने कंट्रोल में रखते हैं हृदय में बैठकर। वो हृदय में बैठकर क्या कार्य करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः परः। 13.23 में भगवान बताते हैं कि इसी देह में एक परम पुरुष रहता है और उसका काम है उपदृष्टा अनुमंता, यानी वो देखता है कि जीव क्या कर रहा है और उसको वो कार्य जो वो करना चाहता है उसके लिए अनुमति देता है, और अनुमति देने के साथ साथ वो उसकी सहायता करता है उस कार्य में। क्योंकि जिस तरह हमारे घर में प्लग पॉइंट होता है, उसमें चाहे हम कितना ही सुंदर बल्ब लगा दें, कितना ही ना अच्छा एक्सपेंसिव हो, लेकिन यदि उसका कनेक्शन पावर बैंक से नहीं होगा, पावर हाउस से कटिंग होगा, तो फिर वो बल्ब नहीं चलेगा। उसी तरह आत्मा का कनेक्शन जब तक परमात्मा के साथ नहीं होता है तो वो आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकती है। भले वो शरीर के अंदर हो, लेकिन उसको कार्य करने के लिए परमात्मा की सहायता होती है। तो परमात्मा का वो स्वरूप जो हृदय में रहता है, उसके चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म। कुछ लोग ऐसे होते हैं, केचित कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका ध्यान करते हैं, और फिर जब वो उनका ध्यान करते हैं तो फिर उन्हीं के लोक में प्राप्त, मतलब बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, और बहुत सारे वैकुंठ लोक के अंतर जितने भी नारायण हैं उनके चार हाथी होते हैं और उनके यही चार आयुध होते हैं। परंतु ये जो भगवान के शस्त्र हैं शंख चक्र गदा पद्म, उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। मतलब किसी के हाथ में ऊपर वाले दोनों हाथों में शंख चक्र होते हैं और नीचे वाले में गदा पद्म होते हैं। कुछ के ऊपर वाले हाथ में जो है वो गदा पद्म होते और नीचे वाले में शंख, मतलब इनकी सबकी पोजीशन जैसे जैसे चेंज हो जाती है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा, उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे जितने भी नारायण स्वरूप हैं उनके अलग अलग नाम हैं, पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह त्रिविक्रम ऋषिकेश केशव माधव अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकरशन श्रीधर वासुदेव दामोदर जनार्दन नारायण, ये सब अलग अलग नाम हैं। और वो कैसे पता चलता है, उनके शस्त्रों की चेंजिंग, बाकी उनका स्वरूप सेम होता है, उनका कलर सेम होता है, उनके चार हाथ होते हैं, मगर उनमें जो ये हथियार पकड़े हुए ना उनकी पोजीशन अलग अलग होती है। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस विष्णु स्वरूप के अंदर अपना मन टिकाते हैं। अनुवाद देखिए, अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता यानी 8 इंच परिमाण के चार हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को श्रवण करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा रूपी भगवान के स्थानीय व्यक्तित्व का परिमाण बीच की उंगली से अंगूठे तक है, अर्थात एक पित्ता या लगभग 8 इंच माना जाता है, यानी कि उनकी साइज है तकरीबन 8 इंच के। तो इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप जनार्दन कहलाता है, जिसके चार हाथ होते हैं और क्रमशः शंख, ये जो बताया गया, कमल रथ का पहिया, शंख और गदा। तो पहले शुरू वाले हाथ में क्या होगा, कमल होगा, और उसके साइड वाला जो दूसरा हाथ होगा उसमें चक्र होगा, नीचे शंख होगा और गदा। तो इस स्वरूप को जनार्दन कहा जाता है। जन सामान्य को वश में रखने वाले भगवान का पूर्ण अंश। तो इसी प्रकार कमल शंख आदि प्रतीकों को चारों हाथों में अलग अलग तरह से धारण किए हुए भगवान के अन्य अनेक रूप हैं और वे विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह त्रिविक्रम ऋषिकेश केशव माधव अनिरुद्ध प्रद्युम्न शंकरशन, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अधोक्षजा तथा उपेंद्र। तो ये भगवान के अलग अलग वैकुंठ, 24 वैकुंठ लोक हैं, जिनमें है ना अलग अलग भगवान स्वरूप में होते हैं। उनका स्वरूप सेम होता है, बस ये जो उनके चिन्ह हैं वो अलग अलग हाथों में होते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अंतर्यामी स्थानीय भगवान के ये 24 स्वरूप ग्रह मंडलों में के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं, और प्रत्येक ग्रह मंडल में भगवान का एक अवतार होता है, जिनका परव्योम के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक आकाश में एक विशिष्ट वैकुंठ ग्रह होता है। अब परव्योम में हर एक स्वरूप का एक अलग वैकुंठ है। आपका मन किस रूप की ओर आकर्षित होता है, योगी जन ध्यान करते हैं तो जिस स्वरूप की ओर आकर्षित होते हैं उसे उसी स्वरूप के लोक में भेज दिया जाता है मृत्यु के बाद। तो ये बहुत 24 स्वरूप हैं, और चैतन्य चरिता अमृत में कृष्णदास कविराज महाराज ने इसके विषय में बहुत ही डिटेल से व्याख्या की है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों स्वरूप हैं, और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट ग्रह होता है, जिनमें से यह भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। वास्तव में भक्तों, इस भौतिक जगत में हम आनंद प्राप्त करने के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भौतिक जगत तो उन वैकुंठ के आगे निगरणीय है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी बहुत बड़े महल को, यदि हम देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, जो महल में रहते हैं तो हमारे घर जो होते हैं, भले हम कितने अच्छे तरीके से बनाए होंगे तो उनको कैसा लगेगा कि ये तो झोंपड़ पट्टी है। उसी तरह से यहाँ इस भौतिक जगत का जो सबसे बहुत ज्यादा कीमती जो महल होंगे या जो भी होंगे, बड़े बड़े घर होंगे जो भी होगा, तो वो वैकुंठ जगत से ऐसा लगेगा कीड़े मकोड़ों के रहने की जगह है। तो लेकिन फिर भी मनुष्य इस भौतिक जगत में आकर बस यही सोचता है कि यहीं पर हम आरामदेह जीवन गुजारें, बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वास्तव में ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि हम इस अनित्य जगत में आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस जगत में हम जितना भी सुविधाएं प्राप्त करेंगे हमें इसे छोड़ के जाना होगा, क्योंकि ये जगत तो टेम्परेरी है, अनित्य है। जैसे अगर हम आज अमेरिका में जाएं और हमें पता होता है कि भाई अमेरिका में मुझे सिर्फ एक महीने की रहने की जगह मिली है या फिर एक महीना मुझे रहना है, तो फिर वहीं पर मैं एक बहुत ज्यादा खूबसूरत घर बनाऊं, उस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करूं, बहुत मेहनत करूं, बहुत बहुत करूं, या फिर हम दो दोस्तों एक वहीं पर घर बना के एंजॉय करना चाहे, और दूसरा सोचे मैं अमेरिका में ऐसा बिजनेस करूं कि मुझे इतना सारा धन मिले कि मैं अपना अपने कंट्री में अपना एक घर ले सकूं। तो इन दोनों में से कौन बुद्धिमान है? वो जो वहीं पर आनंदित होना चाहता है जहां से एक महीने के बाद उसे निकाल दिया जाएगा, या वो जो ऐसा एक महीने में ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसे इतना कुछ प्राप्त हो कि उसे वापस कभी भी किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना रहे, है ना। तो इसी तरह से हमें भी भगवान चॉइस देते हैं कि तुम्हें इसी भौतिक जगत में जहां से तुम्हें आज नहीं तो कल निकाल दिया जाएगा, वहीं पर मेहनत करके सुखी रहने का प्रयास करना है, जो कि संभव भी नहीं है क्योंकि असुखम लिख दिया, और या फिर ऐसी जगह पर जाने का प्रयास करना है जहां पर जाने के बाद लौटना नहीं पड़ेगा और वहां पर कोई कष्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुख नहीं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वही उसी भगवान के लोक में जाने के लिए प्रयास करेंगे। यहां श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, यद्यपि इस भौतिक जगत के नर से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं, और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान
सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है। तो भगवान वास्तविक भोक्ता है, और जब हम इस बात को स्वीकार करेंगे तभी ज्ञात्वा माम शांति मिर्चति। भगवान कहते हैं 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिर्चति। जो ये जान लेता है कि मैं ही भोक्ता हूँ यज्ञ तपस्याओं का, और मैं समस्त जीवों का सुहृद हूँ, सबका भला चाहता हूँ, सबको प्रेम करता हूँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, सिर्फ मनुष्यों का नहीं समस्त पशु पक्षियों का भी मैं सुहृद हूँ, जो ऐसा जान लेता है ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, उसे ही वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जीव अनेक अनेक जन्मों से शांति को ढूंढ रहा है, और वो तभी संभव है जब हम भगवान को स्वीकार करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये जो चतुर्भुजी स्वरूप हमारे हृदय में रहता है, 8 इंच की जिसकी साइज है, उसके अलग अलग आयुध होते हैं, और उनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर होता है। जो योगी जन इस परमात्मा स्वरूप का हृदय के अंदर ध्यान करते हैं, वो उस हृदय के अंदर धारणा करते हैं कि भगवान के प्रत्येक अंग कितने ज्यादा सुंदर हैं, अत्यंत ही सुंदर, क्योंकि ये जीव की प्रवृत्ति है कि सुंदरता उसको आकर्षित करती है। तो भगवान क्योंकि भगवान है, तो भगवान के अंदर सारे गुण हैं, है ना, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति गणा। तो भगवान के अंदर सबसे सुंदरता है, सबसे अधिक सुंदरता, वो सुंदरता जो कभी क्षय नहीं होती है, नित्य तरुण है भगवान, और नित्य उनकी सुंदरता जो प्रतिक्षण वर्धमान होती है, ऐसा नहीं है, लिमिट नहीं है उनकी सुंदरता की कोई। और वो कितनी सुंदर हैं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं बहुत ही सुंदर शब्द में। वे कहते हैं, प्रसन्न वक्त्रम नलिनाय तीक्ष्णम् कदम्ब किञ्ज कपिशङ्गवाससम् लसन् महारत्न हिरण्यमङ्गदम् सुरन् महारत्न कीरीटकुण्डलम् प्रसन्न वक्त्रम् नलिनाय तीक्ष्णम् कदम्ब किञ्ज कपिशङ्गवाससम् लसन् महारत्न हिरण्यमङ्गदम् स्फुरन् महारत्न कीरीटकुण्डलम् प्रसन्न वक्त्रम् नलिनाय तीक्ष्णम् कदम्ब किञ्ज कपिशङ्गवाससम् लसन् महारत्न हिरण्यमङ्गदम् स्फुरन् महारत्न कीरीटकुण्डलम् प्रसन्न वक्त्रम्। वो भगवान जो हृदय में रहते हैं, उनका वक्त्र कहते मुख, उनका मुख सदैव प्रसन्न रहता है। भगवान को कभी कोई दुख होता नहीं है, भगवान अगर चाहे भी ना तो भी कभी दुखी नहीं हो सकता। जैसे कभी सूर्य देव की इच्छा हो जाए, काश मैं अंधेरे का दर्शन करके आऊं, तो संभव नहीं है, क्योंकि वो जिधर जाएंगे वहां पर सूर्य प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा तो नहीं होएगा ना। तो उसी तरह से भगवान यदि चाहे ना तो भी दुखी नहीं हो सकते। भगवान का हृदय सदैव प्रसन्न रहता है वो, और जो भगवान की शरण में आता है वो भी सदैव प्रसन्न हो जाता है, उसके भी सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से सूर्य स्वयं कभी अंधकार नहीं देखता, लेकिन जो सूर्य के पास चला जाता है उसे भी कभी अंधकार के दर्शन नहीं होते, उसी तरह भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, और जो भगवान की शरण में जाते हैं वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जैसे भगवान का अनुभव हो जाता है, वो कभी भी न शोक करता है न कोई इच्छा करता। मद भक्त
अंतिम लभते परम, क्योंकि भगवान की भक्ति उसको प्राप्त हो गई, वो परम भक्ति, भगवान का सानिध्य, तो उसके उसके जीवन में आनंद होना स्वाभाविक है, तो वह सदैव प्रसन्न रहते हैं। और नलिनाय ते क्षणम, नलिनायत यानी कमल की पंखड़ियों के समान फैले, नलिन कहते हैं कमल की पंखड़ियों के, अक्षण कहते हैं आंखें, भगवान के नेत्र कमल की पंखड़ियों जैसे सुंदर हैं। और कदम्ब किंजल, कदम्ब यानी कदम, जो कदम का जो पुष्प है, किंजल का केसर यानी जो येलो कलर का कदम कदम का पुष्प होता है, और केसर जो बहुत ही गोल्डन कलर की चमकदार है। पिशांग वाससम, पिशांग कहते हैं पीला, और वाससम यानी वस्त्र, भगवान का पीला वस्त्र कदम्ब के पुष्पों की तरह और केसर की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर और अत्यंत ही चमकदार लगता है। भगवान के वस्त्र इतने सुंदर हैं। और आगे कहते हैं लसन महारत्न, लसन मतलब लटक रहा है क्या, महारत्न बहुमूल्य रत्न लटक रहे हैं कहाँ पर, हिरणमय यानी स्वर्ण से निर्मित है वो अंगदम, उन्होंने जो आभूषण पहने हुए हैं भगवान ने, वो इतने सुंदर सोने और जवाहरात से बने हुए हैं, और उनके शरीर पर अलग अलग जगहों पे आभूषण लगे हुए हैं। स्फूर्त वो चमक रहे हैं, स्फूर्त हो रहे हैं, महारत्न अत्यंत ही मूल्यवान भगवान की ज्वेलरी है, और वो कहाँ पर है, किरीट कुंडलम, उनके भगवान के मुकुट में, भगवान के कुंडल जो कानों में पहनते हैं उसमें, भगवान के बाजूबंद कमर पट्टी, मतलब हर एक जगह पर। एक तो भगवान स्वयं सदैव सुंदर हैं, तरुण रहते हैं, कभी भी भगवान क्षीण नहीं होता, उनका शरीर सदैव नवयौवक रहते हैं, उनका मुख सदैव प्रसन्न रहता है, कमल की पंखड़ियों जैसे उनके नेत्र हैं, और उन्होंने अत्यंत ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, और बहुत ही सुंदर बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण से जड़ित उनके मुकुट हैं, कुंडल हैं, तो उनकी ओर योगीजन अपना आकर्षण निर्माण करते हैं। अनुवाद देखिए, उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान हैं, और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है, उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं, वे ददीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। आगे उनके विषय में और भी बहुत ही विशद वर्णन है, वे कहते हैं श्लोक नंबर 10, उन्नित्रहृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्था पितपाद पल्लवम श्रीलक्ष्मणम कौस्तुभरत्न कंदरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम उन्नत्रहृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरास्था पितपाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्नकंदरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम उन्नत्रहृत पंकज कर्णिकालये योगीश्वरास्था पितपाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्नकंदरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम उन्नत ऋत पंकज, उन्नत यानी खिले हुए, ऋत यानी हृदय, पंकज कहते हैं कमल के फूल को, कर्णिकालय यानी पुष्प के गुच्छों की सतह पर, तो जो किसके पुष्प हैं, योगेश्वरार्था पित पाद पलम, योगेश्वर जो योगी जन है उनके आस्थापित उनके हृदय के जो फूल हैं, योगियों के हृदय के कमल के जो खिले हुए फूल हैं, उनके ऊपर आस्थापित, आस्थापित मतलब रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं,
पाद पल्लवम, उनके चरण कमल। तो यहाँ पर योगियों के विषय में बता रहे हैं कि जो योगी जन होते हैं ऐसे भगवान की धारणा करते हैं, जिनका चतुर्भुजी स्वरूप है, अत्यंत ही सुंदर रूप है, कमल की पंखड़ी जैसे ना आंखें हैं और बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, उनके अत्यंत ही सुंदर आभूषण और वस्त्र हैं, तो वो रहते कहाँ पर है? हृदय के ऊपर, योगियों का जो हृदय है उसके कमल आसन के ऊपर उनके चरण कमल रखे होते हैं। योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम, वो रख देते हैं, स्थापित कर देते हैं भगवान के चरणों को अपने हृदय पर। और उसके साथ श्री लक्षणम कोस्तु भरत न कंदर, श्री लक्षणम, श्री कहते हैं लक्ष्मी या सुंदर, अत्यंत ही सुंदर। श्री के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ऐश्वर्यवान, सुंदर, प्रेम करने योग्य या बहुत ही ज्यादा सुशील। श्री तो श्री लक्षणम इस प्रकार के चिन्ह है भगवान के। और क्या है? कौस्तुभ रत्न कंधरम, उनके कंधों पर बहुत ही बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं और उन्होंने कौस्तुभ मणि धारण की हुई है। अम्लान लक्ष्म्या, अम्लान लक्ष्म्या मतलब अत्यंत ही सुंदर और ताजा वनमालया, पुष्पहार से आचितम यानी फैला हुआ, उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है और अत्यंत ही सुंदर रत्न जड़त आभूषण है और कंधों पर बहुत ही बहुमूल्य आभूषण है और उन्होंने अपने वक्षस्थल पर अत्यंत ही सुंदर वनमाला पुष्प की धारण की हुई है। तो ऐसे भगवान की धारणा करते हैं योगी जन अपने हृदय में। विकेत अनुवाद देखिए, उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिससे सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों से की मालाओं से सज्जित है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अव्ययों से बना हुआ नहीं है, अन्यथा वह भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इसी तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भगवान के जितने भी आभूषण हैं, वस्त्र हैं, जिनकी हम महिमा सुन रहे हैं, वो भगवान से भिन्न नहीं है, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और वास्तव में इस संसार में जब जीव कोई वस्त्र आभूषण पहनता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि ये पहनकर मैं अच्छा लगूंगा, लेकिन ये भगवान की करुणा है कि भगवान तो वैसे ही सबसे सुंदर है, लेकिन भगवान सुंदर होने के साथ साथ परम सत्य है। उनके प्रत्येक वस्तु जो है वो सब भौतिक नहीं है, भौतिक आवरणों से बनी हुई, इस तरह से हम लोग को लगता है ना, जैसे हम हीरे जवाहर पहनते हैं उसे सुंदर लगते हैं, लेकिन भगवान की प्रत्येक वस्तु भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। और ये वस्तुओं को धारण करके भगवान जो है उन वस्तुओं की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकृत करते हैं। वरना ये अगर भौतिक वस्तुएं होती तो भगवान भौतिक वस्तुओं को स्वीकार नहीं करते। उसी तरह से हम जब भगवान को कोई भी भेंट अर्पण करते हैं तो भौतिक होती है, लेकिन जब भगवान वो स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान अपनी स्वीकृति से उस भौतिक वस्तु को भी दिव्य बना देते हैं। जैसे हम प्रसाद अर्पण करते हैं तो वो भौतिक वस्तु होती है ना, आटा, चावल, दाल, सब्जियां वगैरह मिक्स करके हम उन इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं, लेकिन जब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वही जो हमने भोजन भगवान को अर्पण किया होता है वो प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से जो व्यक्ति अपने जीवन को, अपने देह को भगवान के समर्पित करता है और जब वो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं तो वो व्यक्ति भी दिव्य बन जाता है। इसीलिए केवल शुद्ध भक्तों का जब दर्शन करते हैं तो उनसे भी हमें भगवत प्राप्ति होती। केवल दर्शन न पवित्र करें, हमारे अपराध नष्ट हो जाते हैं यदि किसी शुद्ध भक्त जो हृदय में भगवान को विराजमान करता है इसके दर्शन भी क्यों न हो जाए। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, विभूषितम मे खलयांगुलीयकाय महाधननु पुरकंकणादिभि स्निग्धामलाकुञ्चितानीलकुन्तलय वीरोचमाना ननहासपेशलम् विभूषितं मे कलायाङ्गुलीयकाय महाधननु पुरकंकणादिभि स्निग्धामलाकुञ्चितानि लकुन्तलय वीरोचमाना ननहासपेशलम् विभूषितं मे कलायाङ्गुलीयकाय महाधननु पुरकंकणादिभि स्निग्धामलाकुञ्चितानि लकुन्तलय वीरोचमाना ननहासपेशलम् विभूषितम् अर्थात भगवान का जो स्वरूप है वो विभूषित है, सुसज्जित है, बहुत ही सुंदर से श्रृंगार किया हुआ है। मेखलायाम गिलियक है, मेखलायाम यानी भगवान ने कमर पर करधनी पहनी हुई है, उंगलियां मतलब भगवान की जो उंगलियां हैं उनमें बहुत ही सुंदर अंगूठियां पहनी हुई हैं। महाधनायर अत्यंत ही मूल्यवान नोपुरा बहुत ही सुंदर भगवान ने पायल पहनी हुई है। कंकणादि भी, कंकणादि है ना, कंगन पहने हुए हैं, आदि मतलब और भी जितने जितने जगहों पे आभूषण पहनते हैं वो सब पहने हुए हैं। और उसके अतिरिक्त भगवान के अत्यंत ही सुंदर स्निग्धामला कुंची तनील कुंतल है, भगवान कुंचितम मतलब भगवान के जो घुंघराले बाल हैं वो अत्यंत ही स्निग्ध है। स्निग्ध का मतलब है बहुत ही सुंदर है, और ऐसा नहीं है जैसे घुंघराले बाल जब मन में आता है तो ऐसा होता है ना कि वो बहुत ज्यादा है ना कठोर होंगे, नहीं, बहुत ही ज्यादा मुलायम है, चिकने हैं और अमलम और उसके अंदर कुछ भी कठोर नहीं है, बहुत ही कोमल भगवान के सुंदर बाल हैं। नील कुंतल है, अत्यंत ही सुंदर उन बालों का रंग है बादलों के जैसा। और वीरोचमाना अत्यंत ही सुहाना, आनन हास पेशनम भगवान का सुंदर इतना मुख है कि सुखदेव गोस्वामी बार बार बता आनन कहते मुख को और हास्य यानी सदैव मुस्कुराता हुआ, पेशलम अत्यंत ही सुंदर भगवान का मुख कमल है। अनुवाद देखिए, उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जड़ित अंगूठियां हैं, उनके नूपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सब अत्यंत ही सुहावना है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझा रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी में सर्वाधिक सुंदर पुरुष है। श्री सुखदेव गोस्वामी उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वे यथार्थ हैं और स्वरूप से परम पुरुष हैं। परम सत्य का निराकार पहलू उनका विकिरण मात्र है, जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण मात्र हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर जो मेन बात हमें समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भगवान के स्वरूप के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो निराकार स्वरूप है उसका ध्यान नहीं किया जाता। योगियों के हृदय में भगवान का परमात्मा स्वरूप में ध्यान होता है, जो अत्यंत ही सुंदर है, जो अत्यंत ही
मनोहर है, उनका जो स्वरूप है वो आकर्षित करने वाला है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ये क्यों बताया इतना वर्णन, निर्विशेषवादियों को यह पाठ पढ़ाने के लिए बताया कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोई कल्पना नहीं है। ये जो हम भगवान की विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान का स्वरूप जिसके अंदर होता है, हम भगवान के स्वरूप को मन में बिठाते हैं, तो ये कोई कल्पना नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं ना, आपने कभी भगवान को देखा है क्या, कि भगवान ऐसा लगता है, आप भगवान की मूर्ति खुद बनाते हो और उसकी पूजा करते हो। नहीं, शास्त्र में बताया गया है कि भगवान के इतने सुंदर कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र हैं, भगवान का इतना सुंदर मुस्कुराता हुआ मुख कमल है, चिकने गुंगराले भाल है, भगवान ने पीले कलर का धोती पहना हुआ, इतने सारे आभूषण पहने हुए। तो ये डेफिनेटली जो व्यक्ति वास्तव में श्रद्धा रखता है तो भगवान के स्वरूप पे भी श्रद्धा रखेगा, जो शास्त्र पे श्रद्धा रखता है। तो श्रीमद् भागवतम हमें बता रही है कि भगवान कोई निराकार या फिर केवल कल्पना नहीं है, भगवान का स्वरूप है। और जो भगवान के स्वरूप को समझता है, उससे प्रेम करता है, भगवान उसको उसी स्वरूप में प्राप्त होते हैं। तो अत्यंत ही सुंदर हमने यहाँ पर परमात्मा का वर्णन पढ़ा। इसके आगे भी अत्यंत ही सुंदर रीति से सुखदेव गोस्वामी हमें भगवान के धारणा का रसपान कराएंगे। कृपया आप सब साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।